आस्था का डिसीजन। संजना ने जैसे ही गुस्से में ये कहा तो अचानक से सम्राट जोर जोर से हंसने लगा। अब आगे? तभी संजना अचानक घबरा गई थी। उसे पता था उसके शब्द लाइन क्रॉस कर गए थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो किस तरह से सम्राट से उलझ बैठी थी। वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन सम्राट ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। उसने अचानक आगे बढ़कर संजना का गला जोरों से पकड़ लिया। अब संजना पूरी तरह से घबरा गई थी और वो समझ चुकी थी कि उसके शब्दों ने सम्राट के पागलपन को हवा दे दी है। इसीलिए वो सिचुएशन संभालते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में उसकी ओर देखकर बोली, देखो सम्राट, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मेरी जान मत लो। और वैसे भी जब तक मैं अपनी आंखों से आस्था का खात्मा होते हुए नहीं देख लेती, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं जितनी मोहब्बत अरमान से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं उसकी बीवी से करती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। इस पर सम्राट का एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन उसकी अकड़ बरकरार रही। उसने ठंडी नजरों से संजना को घूरा और कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, इन सब बातों के बारे में तुम्हें सम्राट ठाकुर के सामने तेज आवाज में बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है, मैं शांत बैठा हूं तो तुम्हें कुछ कर नहीं सकता? कहने का मतलब साफ था, संजना के मामले में वो अपने हथियार डालने को राजी नहीं था। संजना के शब्दों ने सम्राट के भीतर के शैतान को जगाने का काम किया था, और उस शैतान से बचना संजना के लिए मुश्किल था। संजना की हालत पूरी तरह से खराब होने लगी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते जा रहे थे। वो सोचने लगती है, अब इस पागल से वो कैसे बचे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने अचानक अपनी शर्ट के दो बटन खोल दिए और वो जानबूझकर अपने शरीर की ओर सम्राट का ध्यान खींचने लगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी इस सिचुएशन में सिर्फ उसका शरीर ही सम्राट के गुस्से को शांत करा सकता है। कहीं ना कहीं सम्राट संजना की इस चाल को समझ चुका था, इसलिए अचानक उसने संजना को अपने कंधों पर उठाया और सीधे बेडरूम में ले आया। सम्राट की यह हरकत से संजना काफी घबरा गई थी। उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। संजना जैसे खून का घूंट पीकर रह गई थी, क्योंकि उसने दिलोजान से चाहा था कि उसके शरीर को सिर्फ अरमान सिंघानिया ही छुए। हालांकि सम्राट भी अरमान सिंघानिया से कुछ कम नहीं था, लेकिन संजना दिल से सिर्फ अरमान सिंघानिया को चाहती थी। सम्राट ने फिर बेदर्दी से संजना को बिस्तर पर लाकर पटक दिया था। अब संजना समझ चुकी थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन तभी सम्राट उसके बेहद करीब जाकर अचानक रुक गया और तुरंत उस पर से हटते हुए बोला, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ उस अनजान लड़की में है जिसे मैं अब अपने बेड पर देखना चाहता हूँ। इतना कहकर सम्राट हल्का सा मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। सम्राट के शब्दों ने संजना उलझन में डाल दिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ बोलेगा। उसे गहरी बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो हैरान होकर मन ही मन यही सोच रही थी, उसके इतने करीब आने के बाद सम्राट ने खुद को रोक कैसे लिया और उसे बिना छुए वहां से कैसे चला गया, वो भी किसी अनजान लड़की के लिए जिसे उसने बस एक झलक भर देखा था। आखिर कौन है वो लड़की? गुस्से में संजना ने अपने बालों को जोर से मरोड़ लिया। संजना को समझ नहीं आ रहा था वो सम्राट की बात का अफसोस जताए या उसकी बात को मजाक में ले ले। वहीं सिंघानिया मेंशन में दरवाजे से टिककर खड़ी हुई आस्था अपने दिल की धड़कनों और सांसों की आवाज सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। काफी समय बाद भी उसे चैन नहीं पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। जब उसे ये महसूस हुआ अरमान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसे वाकई में ऐसा लगा जैसे उससे उसकी दुनिया छीन जाने वाली थी। उसने घर पहुंचने से पहले टाइगर को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि आस्था जानती थी कि सभी लोग फार्म हाउस से वापस आ चुके हैं, तो जाहिर था अरमान वहां अकेला होगा। भले ही उस वक्त आस्था परेशान थी और रो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए उसने तुरंत ही टाइगर को मैसेज करके फार्म हाउस के लिए बुला लिया था और उसके बाद ही वो मेंशन में वापस आई थी। वहीं दूसरी ओर अब सभी लोग अलग अलग तरीकों से आस्था की सिचुएशन को लेकर परेशान थे। तभी अविनाश ने कहा, ठीक है, अगर सब लोगों को लगता है कि कुछ दिनों के लिए आस्था को इस माहौल से दूर लेकर जाना चाहिए, तो मैं आस्था से इस बारे में बात करूंगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से आस्था की आवाज आई, हम कहीं नहीं जाएंगे भैया। आस्था खुद के इमोशंस को शांत करने के बाद वहां आ चुकी थी। इत्तेफाक से उसने अविनाश और बाकी सबको बात करते हुए सुन लिया था। आस्था बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो ऐसा कुछ करे जो उसके पहले से ही बिखरी जिंदगी को और ज्यादा तितर बितर कर दे। आस्था का डिसीजन सुनकर अविनाश थोड़ा परेशान हो गया और वो तुरंत आस्था के पास आकर बोला, गोरी, एक बार फिर सोच लो, सब ठीक कह रहे हैं। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए तुम्हें इस वक्त दिमागी तौर पर थोड़ा आराम करना चाहिए। तब तक एंजल भी आगे आकर अविनाश के पास खड़ी हो गई थी, लेकिन आस्था ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आपको क्या लगता है भैया कि हम इतने स्वार्थी हैं कि अपने पति और परिवार को इस मुश्किल घड़ी में छोड़कर चले जाएंगे? जबकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि राजवीर जिंदल और ब्लैक डेविल किंग के नाम की तलवार हमारे परिवार के गर्दन पर लटक रही है। नहीं भैया, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम इस सिचुएशन में अपने पति और परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आस्था का फैसला अटल था, जिसे सुनकर अविनाश ने आस्था से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था उसकी बहन ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। उसका दिल खुशी और गर्व से फूला नहीं समा रहा था। आस्था अपनी बात जारी रखते हुए बोली, भले ही हम कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गए थे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। ये वक्त हमारे पति और अपने परिवार का साथ देने का है। हम जानते हैं कि उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन हम उन्हें फिर से वापस लेकर आएंगे। बहुत जल्दी आप सब देखिएगा, वो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए तब आस्था की आंखें खुद बहुत नम हो गईं, जबकि उसके चेहरे पर जिद दिखाई दे रही थी। उस समय वो काफी बेचारी सी दिखाई दे रही थी। अविनाश ने आगे बढ़कर उसे सीधा गले से लगा लिया था। वही एंजल भी अब थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और उसने एक कदम बढ़ाकर आस्था को गले से लगा लिया था। और देखते ही देखते आहान, रौनक, ध्रुव, वंशिका, रश्मि, राधिका, साथ ही साथ आकाश और सुमित भी आगे बढ़ाते हैं और सभी जाकर उन लोगों के गले से लग जाते हैं। एक पल के लिए सब लोगों को एक साथ देखकर अबीर के माथे पर थोड़ी हैरानी और आश्चर्य के भाव आ गए थे और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने गर्व के साथ आस्था की तरफ देखा और एकदम से बोला, बटरफ्लाई, वाकई तुम्हें सलाम करना पड़ेगा। इतना कुछ होने के बाद भी तुम इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई हो, हैट्स ऑफ टू यू। इतना कहकर उसने बाकी सबको मुस्कुराकर देखा और अपने रूम में चला गया। वहीं दादाजी खुशी के साथ ये सारा दृश्य देख रहे थे। ठीक उसी वक्त वसुंधरा आगे आई और आस्था के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हुई बोली, आस्था बेटा, तुम जानती हो घर क्या होता है, घर को कैसे संभालना होता है, अपने परिवार और अपने पति की देखभाल कैसे करना होता है। ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है। वसुंधरा के कहने का मतलब साफ था। आस्था का साथ पाकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। आस्था का दिल भर आया था और उसने अपने सामने जोड़े हुए वसुंधरा के हाथों को थाम लिया और फिर अपने सिर पर रखते हुए बोली, वसुंधरा आंटी, आपके हाथ हमारे सामने जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमें आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, उतना ही काफी है।
इतना सुनते ही वसुंधरा की आंखें भी पूरी तरह से नम हो गई थी और उसने आस्था को कसकर गले से लगा लिया था। वहीं वीर बड़े ही ध्यान से सारा सीन देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा गई थी, उसका दिल भर आया था। पछतावे की आग में उसका तन और मन झुलसने लगा था। उसे अपने आप से नफरत सी होने लगी थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि इन लोगों का अरमान के साथ खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अरमान पर इतनी जान झड़कते हैं, अरमान को इतना प्यार करते हैं, उसे इतना पसंद करते हैं। और एक मैं हूं जो अरमान से अनजानों की तरह व्यवहार करता हूं, जबकि अरमान तो मेरा सगा भाई है, फिर भी मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सी दूरी है। पता नहीं क्यों मैं उसे पूरी तरह से अपना नहीं पा रहा हूं। आखिरकार क्यों, जबकि मेरी जिंदगी तो पहले ही बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हालांकि मैं जिंदगी का हर एक रंग देख चुका हूं, लेकिन अरमान की वजह से एक बार फिर से इस महल जैसे घर में अपने परिवार के साथ हूं। ये सब सोचकर वीर ने मन ही मन में ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों का साथ हर मुश्किल में दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि अरमान की यादें वापस आ जाएं। मैं उनके दुश्मन से लड़ने में मैं भी उनकी मदद करूंगा। वीर आगे बढ़ा और आस्था के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और एकदम से बोला, भाभी। ये पहली बार था जब वीर ने आस्था को देखकर सच्चे दिल से उसे भाभी कहा था, और बड़े ही प्यार और सादगी के साथ उसे अपने मन की बात बताते हुए कहता है, भाभी, आपकी इस लड़ाई में मैं भी आपका साथ देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस मामले में मेरा रिकॉर्ड कुछ खास ठीक नहीं रहा है, मुझसे हमेशा गलतियाँ ही हुई हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे आपके लिए और पूरे परिवार के लिए कुछ करने का मन कर रहा है। अब इस परिवार को भी मैंने अपना मान लिया है। मैं जानता हूँ कि अभी इतनी जल्दी आप सब मुझे नहीं अपना पाएंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप लोग मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। आस्था से ये कहने के बाद वीर सीधा जाकर आहन के पास खड़ा हो गया और सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह अरमान भाई को उतना प्यार नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं उन्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? अब जैसे ही वीर ने आहन के सामने जाकर अपने मन की बात कही तो आहन का दिल इमोशन से भर गया। उसने उसके जुड़े हुए हाथों को एकदम से पकड़ लिया था और तुरंत उसे मुस्कुराकर गले से लगा लिया। आहन ने पलकें झपकाई, फिर बिल्कुल आराम से वीर को जवाब दिया, जिस दिन से अरमान भाई तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, उसी दिन से तुम इस परिवार का हिस्सा बन गए हो। अरमान भाई ने चाहे किसी भी सिचुएशन में तुम्हें अपनाने का फैसला क्यों ना लिया हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा भाई कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकता। आहन की मीठी और हल्की आवाज सीधे वीर और बाकी सदस्यों के दिल पर असर कर गई। उसका अपनापन देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दोगुनी हो गई थी और सभी की आंखों में बेहद इमोशंस भरे हुए थे। वहां का माहौल अब पहले से ज्यादा रिलैक्स लग रहा था। आस्था ने अब जल्दी से मारिया के कमरे का रुख किया और सीधा जाकर वहां बैठ गई थी और मारिया को देख के चिंतित आवाज में बोली, मारिया दीदी, आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल सही निकली है, ये देखिए। ये बोलकर आस्था ने कुछ बातें मारिया को सुनानी शुरू कर दी थी। मारिया जो कि अपने कमरे से बेहद कम बाहर निकलती थी, क्योंकि वो बिना किसी की नज़रों में आए पूरे डिजिटल तरीके से डाक विला पर नज़र रख रही थी, उसने आस्था को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी जिसे सुनकर आस्था के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उसके होश पूरी तरह से उड़ गए थे, लेकिन अब उन्हें जिस बात की आशंका थी, जैसे ही वो बात पूरी तरह से सच साबित हुई तो आस्था की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। इस पर मारिया धीमी आवाज़ में उसे समझाते हुए बोली, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। लेकिन इससे पहले मारिया आगे कुछ और कह पाती, उससे पहले आस्था ने मारिया को गले से लगाकर कहा, थैंक यू मारिया दीदी, आप नहीं जानती कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। अब आप देखिएगा, अब हम किस तरीके से उस ब्लैक डेविल किंग का अंत करते हैं। हम जानते हैं कि उसे हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें उसके सामने इस तरह से जाना होगा कि उसे बिल्कुल भी हम पर शक ना हो और राजवीर जिंदल को भी इस बारे में पता ना लगे। पिछली बार जब राजवीर जिंदल केवल कुछ घंटों के लिए डाकविला से गायब हुआ था, तब अरमान जी ने हमें डाकविला जाने से पहले ही रोक लिया था। इसलिए इस बार हमें उस सम्राट से कहीं और मिलना होगा, लेकिन कहाँ, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ अब आप ही हमारी कुछ मदद कर दीजिए ना। तभी अचानक मारिया ने एकदम से कुछ याद करते कहा, सम्राट आज शाम को उस क्लब में जाने वाला है जिस क्लब में रॉकी अक्सर जाया करता था। उस इलाके में उसने रॉकी को पूरी तरह ढूंढने की कोशिश भी की थी। इस पर आस्था एकदम से चौंकते हुए बोली, क्या, लेकिन रॉकी की तो मौत हो चुकी है, तो ब्लैक डेविल वहाँ क्या करने के लिए जा रहा है। तभी मारिया डेंजरस स्माइल करते हुए बोली, जरूर वो रॉकी का पता लगाने के लिए वहाँ जा रहा होगा। उसे नहीं पता कि रॉकी की मौत हो चुकी है, क्योंकि रॉकी को अरमान सिंघानिया ने गायब करवाया है, तो उसे ढूंढ पाना किसी के बस की बात नहीं है। लगता है शायद सम्राट का अपने आदमियों पर से भरोसा उठ गया होगा, या यूं कहें कि ब्लैक डेविल किंग का भरोसा उठ गया होगा, इसलिए उसने खुद वहाँ जाने का फैसला किया होगा।